धीरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधुवा शील प्राभरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योधिका मोक्ष द्वारक पाट पाटन भटा प्रीणन्तु माम साधुवा गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारितारणौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आयरी भक्ति का उसगो को दसालोचिम समनान समदंसन समचर जुतानम पंचविहाचारणम आयरियाणम आयरादि सुदनानोपदेशानम वध्यायानम किरण गुण पालन रयानम सव साहूनम सयानिच काल मुंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुखों को कम को वही लाओ सुबेगम नम समाई मुन्नम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज की, ये रत्नकरंडक श्रावकाचार आचार्य समंत भद्र स्वामी का, जिसके माध्यम से अपन श्रावक धर्म सीख रहे हैं। एक्चुअली जैन धर्म में मुक्ति के दो ही ढंग हैं, एक तो श्रावक की तरह से धर्म का पालन करके परंपरा से मोक्ष पाया जा सकता है, और एक महाव्रती शमन की तरह से साक्षात मुक्ति पाई जा सकती है। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, इन तीनों के एकमेक होने पर ही शुरू होता है। जब ये भेद रूप से रहते हैं तब इसको भेद रत्नत्रय कहते हैं, जब अभेद हो जाते हैं तब ये अभेद रत्नत्रय साक्षात मोक्ष का कारण होता है। हम सबकी कोशिश, जो मोक्ष मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, मोक्ष मार्ग को क्यों हम सच्चाई का मार्ग कह रहे हैं, इसलिए सच्चाई का मार्ग कह रहे हैं क्योंकि हम अपने वस्तु स्वरूप को, जो कि हमारा वास्तविक स्वभाव है, उसको हम इसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। दुनिया के और बहुत सारे रास्ते हैं, घर जाने का रास्ता भी घर ले जाता है इसलिए सच्चा है, और उस तक ले जाने वाला मार्ग भी सच्चा है, लेकिन वो संसार की अपेक्षा से है। हम जब परमार्थ की अपेक्षा से देखते हैं तो सच्चा मार्ग तो वही है जो कि हमें इस संसार से पार ले जाने में सहायक हो। हमारी पूरी कोशिश इस संसार के बीच रह करके भी इस संसार से ऊपर उठ करके अपने आत्मिक स्वरूप को, वास्तविक सुख को प्राप्त करने की है, फिर चाहे वो श्रावक हो चाहे वो श्रमण हो, दोनों का यही कर्तव्य है। वास्तविक कर्तव्य तो यही है। अब इसके बाद और बहुत सारे कर्तव्य हैं। एक श्रावक को 6 आवश्यक परमार्थ की दृष्टि से करना होते हैं, और सैकड़ों आवश्यक चीजें हैं जो कि संसार की दृष्टि से करना होती हैं। एक श्रमण को भी अपने 6 आवश्यक करना होते हैं परमार्थ की दृष्टि से, और लोक व्यवहार में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि उसे करना पड़ती है। ये बात जरूरी है, पर हम ये तो समझ लें कि जो हमें परमार्थ भूत तत्व है उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना होगा। हमें सबसे पहले उस धर्म को समझना होगा जो कि धर्म हमें प्राप्तव्य है। तो धर्म की परिभाषाएं मैंने पिछले दिनों शायद प्रवचन के दौरान आपने सब जानी होंगी। क्रम क्रम से जैसे सोपान पंक्ति होती है, हम एक एक सीढ़ी पर पैर रखते जाते हैं, नीचे वाली छूटती जाती है, ऊपर वाली हम पाप पाते चले जाते हैं। वहां इस तरह का कोई भाव नहीं है, कि मैं नीचे वाली सीढ़ी छोड़ता हूं या कि नीचे वाली सीढ़ी छोड़ना पड़ेगी, ये जो इस तरह से अपन कह देते हैं तो वो एक कहना चाहिए कथन करने की शैली भर है। बाकी वास्तविकता ये है कि नीचे वाली सीढ़ी तो अपने आप छूट जाती है जब हम ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रखते हैं, लेकिन कोई प्ररूपण करने वाला इस तरह प्ररूपण कर दे कि जब तक नीचे वाली न छोड़ो जब तक ऊपर न पहुंच पाओ, तो दूसरे ढंग से करता तो वो कहता भैया ऊपर वाली पे पांव धरो, नीचे वाली की चिंता नहीं करो, तो अपने आप छूट जाने। तो ऐसे ये है कि हम ग्रहण और त्याग दो ही चीजें हैं, अगर हम ग्रहण करना छोड़ दें तो फिर त्याग की बात ही नहीं आएगी। हम ग्रहण करते हैं इसलिए हमें त्याग की शिक्षा दी जाती है कि भैया त्याग करो, क्योंकि आपने ग्रहण कर लिया है, जो आपका नहीं था वो आपने ग्रहण कर लिया। हम आपको बताए देते हैं कि एक्चुअली ये आपका नहीं है, इसको ग्रहण मत करिएगा। तो ग्रहण नहीं करने का नाम ही तो त्याग है, और कोई विशेष चीज तो है नहीं। इसी तरह से धर्म की परिभाषाएं एक के बाद एक, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमें बाकी पीछे छूटती चली जाती हैं, आगे वाली परिभाषा सामने आ जाती। जैसे जीवानम रक्षणो धम्मो, पहली परिभाषा धर्म की है कि जीवों की रक्षा करना, प्राणी मात्र के प्राणों की रक्षा करना, ये धर्म है। पर ऐसा लगता है कि इसमें कौन सा धर्म है, ये तो कोई भी कर लेगा, इससे क्या मतलब है? अकेले प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव रखना, मैत्री भाव रखना, ये तो राग भाव है, ऐसा मन में विचार आ सकता है। लेकिन क्या करें, हमारे और अपने संसार के राग भाव से मुक्त होने के लिए कहते कि एक दो से राग न करो, कर नहीं है तो प्राणी मात्र से करो। तो अपना पराया नहीं होगा, जब सभी अपने हो जाएंगे तो पराया कोई नहीं होगा, और अपने पराये के सिवा यहां संसार में है क्या? संसार का प्रपंच ही वहीं से शुरू होता कि जो हम आओ और जो तुम आओ, जो हम आओ और जो तुम आओ। इसको तोड़ने के लिए पहली परिभाषा दी कि जीवानम रखनो धम्मो, सब जीवों की रक्षा करना ही तुम्हारा धर्म है। फिर कहते इतने से हो जाएगा क्या कल्याण? कहते नहीं, अभी शुरुआत तो करो, लेकिन इसके बिना नहीं होगा, यहां से शुरुआत करना पड़ेगी। फिर हम तुम्हें दूसरी सीढ़ी बताएंगे, दूसरी सीढ़ी पर पैर रखो। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, धर्म के जानने वालों ने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही धर्म कहा है, अब तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ग्रहण करो। तो कहते ठीक, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण कर लिया हमने, क्या अकेले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से हो जाएगा? कहते नहीं, समाधि भावो दस भियो धम्मो, अब तुम रत्नत्रय को प्राप्त करके अपने भीतर परिणामों की विशुद्धि के लिए उत्तम क्षमा आदि दस धर्मों का पालन करो। तो अब जो है दस धर्मों का निश्चय धर्म अलग है, व्यवहार धर्म अलग है, तो दस धर्मों का पालन जो है अब वास्तविक जो है उसको तुम अपने भीतर पालन करो। फिर बाद में आखिरी परिभाषा कहेंगे कि वत्थु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, तुम अपने उस स्वभाव को अब प्राप्त कर लो, तुम इस योग्य हो गए क्योंकि तुमने समाधि भावों को प्राप्त कर लिया है, ये समाधि भाव ही तुम्हारे हैं, तुम इनमें स्थित हो जाओ तो यही तुम्हारा वास्तविक धर्म है। बाकी तो हम तुम्हें धीरे धीरे उस प्रपंच से बचाने के लिए यहां तक एक एक चीज पकड़ाते हुए लाए हैं ऐसी। तो इस रत्नकंठ श्रावकाचार्य के माध्यम से हमने कौन सी परिभाषा सीखी धर्म की, कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, यदि प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति, अगर संसार बढ़ाने हो गए तो कछु दिक्कत नहीं है, बढ़ाओ हाँ, और अगर संसार ने बढ़ाने हो और मोक्ष की कछु बात हो गए तो फिर भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही जो है धर्म है, इसके सिवाय इससे विपरीत जो भी हम करते हैं वो सब तो भाव पद्धति है, वो तो सब संसार को बढ़ाने वाली चीज है। अब निर्णय आपके हाथ में, चॉइस आपकी है कि आपको क्या चुनना। आपको संसार अच्छा लगता हो तो संसार का मार्ग चुन लो, कोई बात नहीं है, कोई हाथ नहीं पकड़ने वाला यहां दुनिया में। और अगर तुम्हें मोक्ष का मार्ग चुनना है तो मोक्ष का मार्ग तो ये है। तो कहते कि फिर आपने ये तो कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, तो बताओ कि सम्यक दर्शन क्या है। तो आगे परिभाषा बताते कि श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूरा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। हम तो सम्यक दर्शन उसको कहते हैं, वैसे सम्यक दर्शन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अभी मैं निश्चय व्यवहार में लगाइयो जो बड़ी दिक्कत हो जाए, जो निश्चय से भी है जो व्यवहार से भी है, जिस सिद्धांत की भाषा है और अध्यात्म की भाषा में इसी को निश्चय व्यवहार कहते और कुछ नहीं, झगड़ा और कुछ नहीं। एक सिद्धांत के नए हैं और एक आगम भाषा के नए, एक आगम के नए हैं एक अध्यात्म के नए हैं। सो अध्यात्म के नयों की अपेक्षा इसी को निश्चय व्यवहार कहते। सच्चे देवगुरु शास्त्र का जो श्रद्धान है वो व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है, उसमें भी निश्चय सम्यक दर्शन है। का मुनि महाराज को सत्य देवगुरु शास्त्र को श्रद्धा नहीं होता का भैया? क्या निश्चय सम्यक दृष्टि को सत्य देवगुरु शास्त्र को श्रद्धा नहीं होते? तो इसका मतलब है कि उसके साथ में भी सच्चे देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कह करके एक तरफी मत डाल देना, क्योंकि जब तक सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में नहीं बैठोगे तब तक सात तत्वों का सम्यक श्रद्धान कैसे संभव है? आज तक कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करे बिना सात तत्वों को श्रद्धान कर लो हो गए हो तो बताओ भाई, तो कहते है ही नहीं। फिर बाद में दूसरा सूत्र कहेंगे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व का हूबहू जैसा है, जो तत्व अपने जिस स्वरूप में जैसा अवस्थित है उसे वैसा ही श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन। जो तत्व अपने स्वरूप में जैसा स्थित है, जैसा जयेंद्र भगवान ने कहा है उसका वैसा ही श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। कहते सुसात ही तत्वों को भी जान लो तो इससे होने वाला क्या है? देखो अब सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करवाई पहले, फिर कहते अब सात तत्व जानो, अब कहते अकेले सात तत्व जानने से क्या होता? आप अपर का भीर विज्ञान हो गए तो कुछ बात बने। अब ये जानो कि इन सात तत्वों में से तुम जीव तत्व हो, शेष सब तुमसे जुड़ा है। तुम जीव तत्व हो, आपापर का भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। उसके बाद की परिभाषा उससे ऊंची सीढ़ी है। फिर कहते कि आपापर में गायक हो पड़े आत्मविशुद्धि मात्रम तू इतरत। वास्तव में तो आत्मा की विशुद्धि का नाम ही सम्यक दर्शन है। कहते रखे रहो जी सब परिभाषाएं अपनी अपने पास, हम बताते आपको आखिरी परिभाषा। आखिरी परिभाषा तो क्या है कि दर्शन मोहिनी के छह उपसम और छह उपसम से होने वाली भाव दशा का नाम सम्यक दर्शन है। अकेले इतने से नहीं होने वाला कि आपने ये चीजें कर ली। वास्तविकता तो ये है कि दर्शन मोहिनी के छह उपसम और छह उपसम से उत्पन्न होने वाली भाव दशा ही वास्तविकता से सम्यक दर्शन की उपलब्धि है। जब तक भीतर से हमारे इन दर्शन मोहिनी कर्म की तीन जो प्रकृतियां हैं उनका क्षय या कि क्षयोपम या के उपसम नहीं होगा तब तक हमारी भाव दशा सम्यक दर्शन की नहीं बन सकती। इतना पुरुषार्थ करना होगा कि कर्ण लब्धि के द्वारा अपने अधः प्रवर्तकरण अपूर्वकरण और अन्यवृत्तिकरण इन परिणामों के द्वारा दर्शन मोहिनी का क्षय करना पड़ेगा या उपसम करना पड़ेगा। सब्साइडेशन, उपसम मतलब सब्साइडेशन, थोड़ी देर के लिए अंतर मुहूर्त के लिए अपने उन कर्मों को दबा दिया, नीचे कर दिया, उदय में नहीं आने दिया, हमारा मन विशुद्ध हो गया उतनी देर के लिए, और हमने कुछ थोड़ा सा क्षय कर दिया, कुछ थोड़ा सा उपसमित किया है, दोनों काम एक साथ है तो मिली जुली अवस्था है, तो वो क्षय उपसम सम्यक दर्शन कहलाता। और कहती अगर बहुत गुंजाइश हो गए, आज तो ऐसी गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब केवली शुद्ध केवली होते हैं तो उनके पाद मूल में बैठ करके अपने उस दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृति और चारित्र मोहिनी की चारों प्रकृतियों को एक तरफ हटा करके निकाल के फेंक देता है, तब उसको क्षय हो जाने से छायक सम्यक दर्शन होता। उसके लिए तो केवली श्रुत केवली का पादमूल चाहिए, अकेले सात तत्वों की श्रद्धान से काम नहीं बनने वाला। केवली श्रुत केवली के पादमूल में बैठ करके छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। इतनी सरल सी चीज नहीं है, लेकिन अगर कोई आत्म पुरुषार्थ करे तो बहुत सरल चीज है। और शुरुआत यहीं से होती, सम्यक दर्शन से ही शुरुआत होती। ऐसी सारी परिभाषाएं बता दी, अब हम क्या करें? तो कहते कि भैया सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा से शुरू करो, ज्यादा झगड़े में मत पड़ो। सच्चे देवगुरु शास्त्र के सानिध्य में जाके बैठो। कुछ नहीं भी आता हो ये मत सोचना कि हम अंगूठा लगा के जाना थे और पढ़े लिखे नहीं है तो हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, कैसे हमें सात तत्व की परिभाषा नहीं आत, ऐसे धोखे में नहीं रहना। चलती फिरती गाय भी कौन स्कूल में नहीं पड़ी, मनो उसके लाने तक सम्यक दर्शन हो सकता है। जिन बिंब के दर्शन मात्र से उसको, मुनि महाराज जी की रस्ते में जाते हुए मुद्रा देखने मात्र से उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन तो ठीक है, देश व्रत तक हो सकता, पांचवा गुण स्थान तिरंत जो हमारे सामने हम लाठी मार के दुत्कार के भगा देते हैं उनके लिए भी देश व्रत हो सकता। वो कहो हम अपने अहंकार में डूबे रहवे कि कहां के सम सच्चे देव गुरु शास्त्र कहां का हम तो सब जानते हैं। अगर ऐसे अहंकार में डूबे रहवे तो हमारे सम्यक दर्शन का कोई प्रतिहान नहीं, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है जीवन में धर्म की शुरुआत। तो इतना जो है सरल भी है और कठिन भी है, पर ये हमारे भावों पर निर्भर करता है। अगर हमारे भावों में विशुद्धि है, हम तो सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या कहते, हमारी आंख साफ हो गए सुसम्यक दर्शन, जो चीज जैसी है वैसी देखा हो गए हमारी आंख तो हम सम्यक दृष्टि है। मगर जो चीज जैसी है वैसी कहां देखते हम तो पेन को पेन बाद में जाना, हम आओ आए तो हम आओ तुम आओ कब से हो गई, यही तो दृष्टि का विमोह है। हम आओ आए जो कहां से होगा, जो तो अजीव तत्व है, पुद्गल की परिणति है, पुद्गल की परिणति को हम आओ तुम आओ केंद्र केंद्र लग गया, इतना सा फर्क है। इतने में ही जो है दृष्टि बदल जाती। तो ऐसी विशुद्ध दृष्टि से धर्म की शुरुआत होती है। हमने पिछले दिन भी कहा था कि हमारी अप्रोच पे डिपेंड करता है, हमारी अप्रोच क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या, हमारा सोच का ढंग क्या है, इस पे डिपेंड करता है। हम बाहर क्या कर रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं करता। बाहर तो कोई बहुत अच्छा भी ऐसा शांत बैठा हो बिल्कुल कोने में, ऐसा लगता हो कि बड़े भैया बिल्कुल एकदम शांत हो, को भीतर ऐसा हिसाब चल रहा हो कि एक ठो बम आ तो हमारे हाथ में हाइड्रोजन बम और पटक देते तो सब साफ हो जाते, हम अकेले रह जाते, ऐसा तक आ सकता। कोने में बैठो को समझ में नहीं आए, अपने मन के विचारों का देखिएगा कोई भरोसा नहीं। बाहर से शांत हो सकता लेकिन भीतर बहुत अशांत। और कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता कि संसार के सारे काम कर रहा है, दिखाई पड़ता है कि मंदिर तक तो आ नहीं पाया आज, लेकिन उसके मन में विशुद्धि इतनी हो सकती है कि घर में बैठे हुए भी 24 घंटे के अब चला जाऊं मंदिर अब चला जाऊं, ऐसा छटापट भी हो सकती कि कब इस संसार के प्रपंच से बचूंगा और कब अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करूंगा, ऐसी जो भीतर छटापटी मची है वो सम्यक दर्शन की भूमिका है। और नहीं तो मंदिर में बैठी और सारो विचार काय को है कि जो कौन की बनाई वेदी आए और जो कौन ने ऐसे होते बनवा दो, अरे हम होते तो हमें ऐसे करवाते जो करवाते, और घर के इतने काम डरे भी सब करने और बैठी मंदिर में। तो ऐसे विचार से धर्म की शुरुआत नहीं होती। मैं आपसे बहुत सामान्य सी बात कर रहा हूं कि ये सब चीजें तो बहुत बाद की हैं, इतने बड़े ग्रंथों को तो बहुत बाद में समझिएगा, समझ के भी क्या करिए। बेले मोटी मोटी जो संसार की बातें हैं जिनमें हम रोजमर्रा के जीवन में लगे हुए हैं उनको हम पहले समझने की कोशिश करें। तो सम्यक दर्शन वो है जिसमें कि हम श्रद्धान करते हैं किसके प्रति, सच्चे देवगुरु शास्त्र के। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, आप्त आगम और तपोव्रत अर्थात सच्चे देवगुरु शास्त्र, इन तीनों के प्रति जो हमारा श्रद्धान है, सच्ची श्रद्धा है, रुचि है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो कहते अकेली रुचि से हो जाएगा काम, कहते नहीं परमार्थानाम, अपने स्वार्थ बस तो रुचि कई बार की हमने, सच्चे देवगुरु शास्त्र पर अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कई बार हमने रुचि करी है, उससे नहीं, ये मेरे मोक्ष के कारणभूत हैं। ऐसी बुद्धि के साथ जब हम उनके ऊपर श्रद्धान करते उनमें रुचि दिखाते हैं तब हमारे भीतर सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। और फिर त्रिमूढ़ापूर्णम अष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम, अस्मयम अर्थात अहंकार से रहित होता है सम्यक दर्शन, पहली बात। तीन मूलताओं से रहित होता है सम्यक दृष्टि और आठ अंगों से युक्त होता है सम्यक दृष्टि। ऐसा जो है सम्यक दर्शन हमें पुरुषार्थ पूर्वक ही प्राप्त कर लेना चाहिए। किसी समय का इंतजार करते नहीं बैठे रहना चाहिए कि काल लब्धि आएगी और हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। धवला जैसी महान धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अपने पुरुषार्थ के द्वारा ये जीव इस संसार के पंच परावर्तन को अर्धपुद्गल परावर्तन में परिवर्तित कर देता है और सम्यक दर्शन के योग हो जाता है। पर्याप्तक होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए, जागृत अवस्था होनी चाहिए और पुरुषार्थवान होना चाहिए। इतनी पांच चीजें जिसके पास में हैं वो सम्यक दर्शन की भूमिका को प्राप्त कर सकता है। और जो हाथ पे हाथ धरे बैठा है कि हो जाएगा कौनों दिन अपने आप, तो उसके लिए तो अभी अनंत काल है। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी अंतर मुहूर्त में छूट जाता है और अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक फिर सम्यक दर्शन नहीं हो गए तो कोई भरोसा नहीं, पत्यार नहीं कि हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा जब किसी के हाथ में दर्पण आ जावे तब तो जिम्मेदारी और है भैया कि पोंछत रहो, नहीं तो धूल जम जाएगी। तो जिस चेहरा देखने के लिए आपने दर्पण रखा था वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी हमें ये ध्यान रखना पड़ता कि उस पर मलिनता ना आ पावे, आठ अंगों से युक्त हो, तीन मूलताओं से रहित हो और आठ मदों से रहित हो गए और परमार्थ भूत हमारी श्रद्धा हो गए सच्चे देव गुरु शास्त्र पे, तब वो सम्यक दर्शन कहलाता। कहते सच्चे देव का स्वरूप क्या है, अब एक एक चीज बताएंगे कि ठीक है हमने कह तो दिया कि सच्चे देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धा करो, तो सच्चे देव कौन से हैं बताओ आप। तो कहते आपते नो छिन्न दोषेन सर्वज्ञेना गमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा व्याप्तता भवेत। इसके बिना आप्तपना हो नहीं सकता। अगर कोई सामान्य 18 दोषों से युक्त है तो वो हमारा देव नहीं है, वो तो वीतरागी हितोपदेशी और सर्वज्ञ है, वही हमारा देव हो सकता है। रागी को हम अपना देव नहीं मान सकते हैं क्योंकि वो संसार में फंसा हुआ है, वीतरागी है वही हमारा देव। और वीतरागी अकेला नहीं सर्वज्ञ है, वास्तव में तो आत्मज्ञ है, सर्वज्ञ तो बाद में है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निरानंद रसलीन, अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो गया, चार घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया, सारे लोक को जिसने जान लिया वो हमारा देव है। और कहते कैसा है, हितोपदेशी है, सबका हित चाहने वाला। और कैसे हित चाहने वाला, अनात्मार्थम विना रागी शास्ता शास्ती सतोहिनम हितम धनं शिल्पी करस्परसान मुर्जा किम अपेक्षते। जैसे कि कोई ढोलक पर थाप देता है तो ढोलक उसमें से संगीत निकलना शुरू होता है, ढोलक कभी नहीं चाहती कि मुझे कुछ मिलेगा। ठीक इसी तरह से भवि भागन वस जोगे वसाए तुम धुनि वह सुनि विभ्रम नशाए। हमारे भव्यों के भाग्य से भगवान की दिव्य ध्वनि हितोपदेश अनायास अनात्मार्थम, उनको कछु स्वार्थ नहीं है कि तुम्हें हम चार बातें सुना दें तो हमारा कल्याण भव जात, उनने तो कर ही लो अपनो कल्याण। अपना कल्याण कर लेने के बाद जो है आपके लिए चार लाइन सुना देते हैं दिव्य ध्वनि में, ऐसे भी हितोपदेशी हैं, ये उनकी अपनी विशेषता है। ऐसी वीतरागता हितोपदेशिता और सर्वज्ञता जिसका लक्षण है वो हमारे आप्त हैं, उन पर हमारा सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। और विषया शावसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्त। ज्यादा कठिन नहीं है, संस्कृत में कह दी तो कठिन लगी, हिंदी में कह दी विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं निज पर के हित साधन में जो निश्चिन तत्पर रहती। इतनी सी तो बात है, रोज पढ़ते अपन मेरी भावना में, ये परिभाषा हमारे गुरु की परिभाषा है, इसको हम तपोधन मानेंगे। ये हमारे गुरु हैं कि विषयों की आशा नहीं है जिनके लिए पंचेंद्री के विषय पड़े रह गए लेकिन वे उसमें इंडल्ज नहीं है, वे उनमें आशक्त नहीं है। सब आपके जैसा करते मालूम दिखाई पड़ते हैं, वो भोजन भी ग्रहण करते हैं और सारी वस्तुएं देखते हैं, सुनते भी रहते हैं, पांचों इंद्री के विषय हैं, लेकिन इसके बाद भी इनको उनकी कोई आशा नहीं है, विषयों की आशा नहीं जिनके, या विषय आशा वसाती तो निरारंभो, कोई आरंभ नहीं है। जैसे कि आप संसार के कार्य करते हैं, ऐसा कोई संसार का कार्य नहीं विस्तारते, प्रपंच में नहीं पड़ते और परिग्रह से रहते हैं। मात्र शरीर ही अब शेष रहा है, पीछी कमंडल भी उपकरण है, ये भी उपकरण है, परिग्रह नहीं है, उपकार करते हैं बस इतना ही है, इनमें हमारा स्वामित्व नहीं है। उठा के ले जाए तो भी ये ले जाओ, तुम्हारे काम में तो आए ने, पीछी धरे रहो घरे, काम की तो हम आए है। अब लड़ में थोड़ी जाएंगे कि क्यों उठा ले गए हम आई आए, ये भी नहीं कहेंगे। इतना इस शरीर को भी कहते कि छिद्युआ विद्युआ निजुआ अहवजादु विपलयम जम्मा तम्मा दुगछदु तहा भी न परिग्रहो मध्य। ये शरीर भी मेरा छिद जाए भिद जाए, या कि कोई इसको उठा करके कहीं फेंक भी दे, तब भी मैं इसे अपना नहीं मानूंगा, यही अपरिग्रह है। इतना अपरिग्रह है। ऐसे गुरु के लिए हम सच्चा गुरु मानते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते, उनके चरणों में बैठ करके हम अपना मोक्ष मार्ग शुरू करते हैं। और हमारे शास्त्र कैसे, आप तो शब्द मनोलंग मद्रस्तेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशम सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम, ऐसा शास्त्र जो कि कापत घट्टनम, जो कि उन मार्ग से हमें बचाता हो, और आप तो पज्ञ भगवान के द्वारा कहा हो, जिस चाय के द्वारा नहीं, सर्वज्ञ भगवान वीतरागी के द्वारा जो कहा गया हो, आप तो पज्ञम अनुल्लंग, जिसका कोई उल्लंघन न कर सके, और आप तो पज्ञ मनुल्लंग अद्रष्टेष्ट विरोध कम, जिसमें कि प्रत्यक्ष से और अनुमान से कोई विरोध ना आता हो, ऐसा हमारा शास्त्र है। सीधी बात, जिसमें अहिंसा का प्ररूपण हो, सात तत्वों का समीचीन प्ररूपण हो, वो हमारा शास्त्र है, उसको हम, उसके प्रति हम अपनी रुचि या कि श्रद्धा रखते हैं। ये सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है भाई, परमार्थभूत इनका ये स्वरूप है। फिर बाद में कहते कि अब ये बताओ आप कि हमें आठ अंग जो कि एक सम्यक दृष्टि के होना चाहिए, वे कौन कौन से हैं, ताकि हम उनको अपने भीतर प्रकट कर सकें। इन आठ विशेषताओं को अपने भीतर हर सम्यक दृष्टि को प्रकट होने देना चाहिए, ये प्रकट हो जाती हैं। जैसे ही दृष्टि साफ होती है, देखो जिसकी दृष्टि साफ हो गए तो उसके पास कई चीजें अनायास आ जाती, उसके प्रति लोगों की श्रद्धा होना शुरू हो जाती, वो व्यक्ति चार लोगों के बीच अपने आप प्रामाणिक हो जाता, उससे सबका प्रेम भाव हो जाता, ये सारी चीजें अपने आप आती कि भैया जी इनकी दृष्टि बड़ी साफ है, इनकी दृष्टि में दांव पेंच नहीं है, साफ आदमी है, ईमानदार आदमी है। जब ईमानदारी अकेले आ जाने से इतनी सारी चीजें आती हैं, तो सम्यक दृष्टि होने से कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, तो कहते हैं निशंकीय निकंकी निर्विधिविंछा अमूर दिठिया उगूह धिधिकरणम बच्छल पहावना यते अठ। जी आठ बातें एक सम्यक दृष्टि के पास, जिसकी आंख साफ हो गई है, उसके अंदर चर्चा क्यों कर रहे भाई, आठ बातें जो है ये आ ही जाती हैं, निशंकित हो जाता है, निकांक्षित हो जाता है, उसके निर्विचिकित्सा अंग आ जाता है, अमूर दृष्टि आ जाती है, उपगुहन आ जाता है, स्थितिकरण वास्तल और प्रभावना, ये आठों चीजें उसके भीतर आ जाती। इनको हम ऐसा मानते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले के लिए आठ बातें जरूरी हैं। कौन कौन सी? जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो सच्चाई के प्रति कभी संदेह नहीं करता। पहली बात कि सच्चाई के मार्ग पर कभी संदेह मत करना, और थोड़ा सजा करके उनसे कहें, ब्रह्मचारी जी हैं, उनसे कहें कि प्रवचन चल रहा है, आपकी आवाज नीचे तक आती है, धीरे धीरे करो। तो मैं ये कह रहा था कि सच्चाई के रास्ते पर कितना आवश्यक है, धर्म ध्यान के लिए कितनी सारी बातें चाहिए। धर्म ध्यान करना हो तो सब तरफ से शांत और सब चीजें, कितनी चीजें हो, कितने लोगों का सहयोग है, अगर जब कोई निर्णय बनाओ हो तो कहां बैठ के कर लेती, बताओ कितना उपकार है हमारे धर्म ध्यान में, सबका उपकार मानना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि सच्चे रास्ते पर जो अपन चले तो सच्चाई के मार्ग में कभी संदेह नहीं करना, निशंक। अब जब अपन चल ही पड़े हैं, जिस मार्ग को हमने सच्चा मान लिया है, अब उस मार्ग में क्या दुविधा है, अब संदेह करने की आवश्यकता क्या। पहले कर दो संदेह कि पता नहीं जो ठीक है कि नहीं। चौराहे पे खड़े हो और चार तरफ जाता है रास्ता, सो पहले संदेह कर लो कि जो ठीक है कि जो ठीक है कि जो ठीक है कि जो ठीक है। और एक बार निर्णय कर लिया कि ये ठीक है, क्योंकि मुझे तो ग्वालियर जाना है और जो लिखो शिवपुरी, और एक ही बात तो मिले ग्वालियर, और जो तो अशोकनगर जा रहा हूं वो जाने अपन को ग्वालियर है। अब अशोकनगर वाली रास्ता पे भले ही अच्छो डामल, हम के डामल का सोनो बिछो हो तो का करने हमें क्या आवश्यकता, हमें तो इस तरफ जाना है, हमारे रास्ता तो यही है। अब संदेह की आवश्यकता नहीं कि का पता पहुंचे कि नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने उसके बारे में निर्णय कर लिया है और उसको चुन लिया है। तो एक बार अगर हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसको सच्चा देवगुरु शास्त्र माना उस पर अपनी श्रद्धा कर लेते हैं, तो फिर सच्चे देवगुरु शास्त्र के मामले में शंका नहीं करना कि पता नहीं जी मोक्ष, इनसे मोक्ष मार्ग हुई है कि नहीं। कहते तो है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष हो जाता है, मनो का पता होता है कि नहीं। कहते तो है कि यही देव सच्चे हैं, मगर क्या पता है कि नहीं। ऐसा संदेह में नहीं पड़ना, डाउट क्रिएट हो जाना, क्वेश्चनिंग होना अलग चीज है, क्वेश्चन हो जाना वो संदेह नहीं करना कहलाता। भाई इस चीज में हमें थोड़ा सा पूछना है, ये क्वेश्चनिंग अलग चीज है, लेकिन डाउट क्रिएट हो जाना, संदेह हो जाना वो अलग चीज है। इसलिए यहां पर जो है डाउट की बात है, कंफ्यूजन्स हो गए हैं, संदेह पैदा हो गया है, शंका हो गई है, वो जो क्वेश्चन आंसर करते हैं शंका समाधान वो चीज अलग है, वैसा नहीं समझना। तो डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए सच्चाई के रास्ते पर, जब उस पर हम चल रहे हैं उसके प्रति हम संदेह नहीं करेंगे। और सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो अब बेईमानी की आकांक्षा नहीं रखेंगे, अब उन मार्ग की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, और सच्चाई के मार्ग से अधिक किसी चीज की आकांक्षा नहीं करेंगे। मंदिर आ रहे थे या कि प्रवचन सुनने आ रहे थे, अच्छा काम करने जा रहे थे, और किसी ने कहा कि देखो उठे बाद में चले जाइयो, अब ये फोन कर दो फलानी जगह सो लाख रुपया को, तुम आवा ही ठीक भाव जाते साहब। और आप सोचो कि हो भगवान कौन भगे जात, अपन बाद में चले गए, पहले जो काम कर ले। तो इसका मतलब है आप भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंस संसार के कामों को देते, अभी आप निकांक्षित नहीं हुए। ये चलो इतना विश्वास होता है, जिसको निकांक्षित है वो सम्यक दृष्टि, निकांक्षित सम्यक दृष्टि। ये तो अभी हम सामान्य परिभाषाएं बता रहे हैं, वास्तविक परिभाषा अगर बताएं तो जो किसी भी पदार्थ के प्रति आकांक्षा नहीं करता है वो तो निकंको चेदा सम्मा दिखि मुनि लब्धो। उसके लिए समय सारणी में कहते हैं कि वो है जो कि संसार की किसी भी पर वस्तु को अपना नहीं मान करके ग्रहण करने का भाव तक नहीं करता है। वास्तव में तो दसवें ग्यारहवें मन स्थान में पहुंचा हुआ वो सम्यक दृष्टि, निश्चय सम्यक दृष्टि है। हम और आप तो अभी और दूसरी चीजें नहीं चाहताएं, बाकी जो अच्छी चीजें हैं वो तो चाहते, बुरी चीजें नहीं चाहते। इतनी आकांक्षा अभी निकांक्ष एकदम थोड़ी हो सकता कोई व्यक्ति, सम्यक दृष्टि आप इतने निकांक्ष थोड़ी हो सकते कि संसार की चीजें नहीं चाहिए। मनो चाहिए है, मनो भगवान से ज्यादा नहीं चाहिए, भगवान की एवज में नहीं चाहिए। कोई कहे कि हम तो मंदिर ले जाओ, हम तुम्हें लाखों रुपये दे, तो हम कह देंगे नहीं चाहिए विराट मंदिर तो पहले जाना। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं छोड़ सकते, इतनी हमारी संसार की आकांक्षा नहीं है। तो इतना ही निकांक्षित हो सकता है व्यक्ति, सामान्य श्रावक के लिए तो निकांक्षित अंग यही दिखा, क्योंकि कर्म पर वशे शांति दुख ऋतुदय पाप विजय सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता। अनाकांक्ष हम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें हमने जान ली है कि कर्म पर वशे, कर्म आश्रित है, आज है कल नहीं, अब इनकी का आकांक्षा करना जो कि आज है और कल नहीं है इनकी, कितना आकांक्षा करते रहो, कल अपने आप को पाप का उदय आ जाए तो सब छिन जाएंगे, पुण्य की सारी सामग्री छिन जाती है पाप के उदय में। तो कर्म परपेक्षी सा अंते और अंत रहित, अंत रहित है कर्म परवशे शांति दुख इरंति ऋतोदये, और इनमें जो है दुख की बाधा है अर्थात क्षण भर के लिए सुख मिलता है फिर दुख आ जाता है, ये तो ऐसा है जैसे कृपाण पर गुड़ लगा हुआ हो और चाटो तो मीठा भी लगता है और कटता भी चला जाता है। ये संसार का सुख तो ऐसा है, नहीं आता सबके समझ में नहीं आता, ये भौतिक जो सुख है इंद्रिय सुख है इसके पीछे कितना दुख छुपा हुआ है ये समझ में नहीं आता। लेकिन ये जिसका भ्रम टूट जावे उसको समझ में आ जाता कि भैया ठीक तो कह रहे हैं, लगता तो ऐसा है कि अरे वाह हमने अब्बई बढ़िया रसगुल्ला खाओ और कह रहे कि मैं सुख नहीं है, इतनों तो सुख मिलो और का अच्छा, तो एक बार खाए के बाद फिर दूसरी बार खावे की आवश्यकता नहीं आता, तो फिर कौन सा सुख मिला, क्या शाश्वत सुख मिला, क्षण भर का सुख मिला, और अभी मन ठीक था तो रसगुल्ला अच्छा लगा और तनक में अब झट से फोन आ जावे कि तुम आप फलानो ऐसो ऐसो होगा तो रसगुल्ला मुंह में और हाथ में और कच्ची स्वाद नहीं है, कोई स्वाद नहीं उसमें, कह दूसरी बुरी खबर सुन ली, तो ये क्या है इसका अर्थ ये। और दूसरी बात आचार्य महाराज कहते कि अगर रसगुल्ला में सुख है तो एक खाए में थोड़ो कम आओ है, दो में और ज्यादा आओ चाहिए, तीन में और आओ चाहिए, दिन भर खा उतराओ आज जाओ चाहिए बहुत ज्यादा, मानो चार पांच छह दस दस खा लो पंद्रह खा लो के बाद अब नहीं चाहे खाए अच्छे तो खा लो और कम सुख तो मिल जाओ, तो एक में थोड़ो मिलो दो में और ज्यादा मिल है तो, लेकिन ऐसा गणित इसमें नहीं लगता, हम जितना इनको अपने समीप लाते जाते उतने ये व्यर्थ मालूम पड़ने लगते, इसलिए इनकी आकांक्षा नहीं करना। ठीक है जितना आवश्यक है नेसेसिटीज जो है वो तो ठीक है, लेकिन लग्जरी की क्या आवश्यक, लग्जूरियस तो नहीं होता सम्यक दृष्टि मेरे ख्याल से, जितनी आवश्यकताएं हैं शरीर के लिए वे अपनी पूरी कर लेता है और इसके अलावा किसी चीज की उसको आकांक्षा नहीं होती, इतना ही निकांक्षित है। और आज अपन को पढ़ना है निर्वी चिकित्सा, है ना, कल तक ये इतना तो अपने कंप्लीट कर लिया था, मैंने रिपीट कर दिया आपको सारी चीजें फिर से रिवाइज हो जाए। अब आज अपन पढ़ते हैं कि निर्वी चिकित्सा भी उसके भीतर प्रकट हो जाती है, सच्चाई के रास्ते पर चलते समय हम उस पर संदेह नहीं करेंगे, सच्चाई के अलावा हम किसी चीज की आकांक्षा नहीं करेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो सच्चाई से और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों से घृणा नहीं करेंगे। तीसरी बात आगे, हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो सच्चाई के रास्ते के प्रति और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के प्रति हम घृणा नहीं, निर्वी चिकित्सा है, क्योंकि स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जगुप्ता गुण प्रीतिर्मता निर्वी चिकित्सा, हमारी दृष्टि इतनी निर्मल हो गई है कि हमें कहीं कोई ग्लानि नहीं होती। निश्चय से जो परिभाषा बनाई है निर्वी चिकित्सा की उसमें तो कहते कि जितने वस्तु स्वरूप हैं उनके प्रति ग्लानि से रहित जो हमारी भावदशा है उसको ही मनन पूर्वक निर्वी चिकित्सा सम्यक दृष्टि अंग जानना चाहिए। और यहां कहते कि रत्नत्रय पवित्रते और स्वभाव तो सुचौकाये, ये शरीर तो स्वभाव से ही असुचि है, कितनों रगड़ रगड़ के साफ कर लो मनो वो घंटा भर के बाद फिर ज्यों को त्यों हो जाए। और देह परस्ते हो तपावन निस्दिन मल झारी, ऐसा इसका स्वभाव है, देह परस्त अगर आप क्षण भर खो माला अपने डाल लो अच्छी वाली और फिर उतार के कोई खो दो तो वो कह रही रहने दो उतरी उतराई है, देह परस्त हो तपावन इसके स्पर्श मात्र से सारी चीजें अपावन हो जाती हैं, अच्छी से अच्छी पवित्र चीजें इस देह के स्पर्श मात्र से अपावन हो जाती, यहां पर तो रखा हुआ है सो अच्छा है और वही खो बाहर निकालो फिर खाओ दूसरी बार मिट गओ, संपर्क में आते ही साथ नष्ट हो गया ये हम जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी घृणा इस शरीर से नहीं हो पाती है। और शरीर से घृणा भी क्यों करें, हम इसके भीतर बैठे हुए जो रत्नत्रय है उससे स्नेह करें बस इतना। गुण प्रीतिर मता निर्वी चिकित्सा, हमें तो शरीर से घृणा करने की, किस शरीर से, जिस शरीर के भीतर रत्नत्रय की उपलब्धि हो गई है, जो आत्मा रत्नत्रय से युक्त है उसके शरीर को देख करके मुनि तन मलिन न देख घिनावे। इसकी परिभाषा कर लो छाला की, मुनि तन मलिन न देख घिनावे। ये सम्यक दृष्टि का तीसरा अंग है कि जो मुनि है महाव्रती है जिनका शरीर तो अपावन हो ही जाएगा क्योंकि उनके अस्नान व्रत है, स्नान नहीं करेंगे। उनका वास्तविक स्नान तो होता रहता है सूर्य के प्रकाश से और हवाओं से, निरंतर स्नान है। और कहते जी का स्नान है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी में हमेशा प्रक्षालन होता रहता, और ब्रह्मचर्य के तेज से ब्रह्मचारी सदा शुचि, ऐसा लिखा। जो ब्रह्मचर्य से रहता है वो तो हमेशा पवित्र है, उसको स्नान की आवश्यकता नहीं। इस तरफ हमारी दृष्टि रहे, शरीर की अपवित्रता तो स्वभाव से है लेकिन ये जो अशुचि वाला शरीर है वो भी रत्नत्रय के द्वारा पवित्र हो जाता है। हमारा ध्यान शरीर पर नहीं होना चाहिए, हमारा तो आत्मा के गुणों पर होना चाहिए। हर व्यक्ति के आत्मिक गुणों की तरफ देखें, हम उसके शरीर की मलिनता या वस्त्रों की मलिनता की तरफ ध्यान नहीं देवें। आपको शायद ये चीज आपको कहीं आपने सुनी होगी कि ये श्री कृष्ण जी और बलदेव दोनों जन जो है एक बार रास्ते से चले जा रहे थे तो अचानक श्री कृष्ण जी खड़े हो गए और बलदेव जो है उनको बड़ी बदबू सी आई तो उनने नाक पकड़ ली। वो कहा चलो भैया यहां कहां खड़े हो गए। बोले देखो तो बलदेव कितने सुंदर हैं, उस कुत्ते के दांत कितने सुंदर, जबकि वो कुत्ता मरण को प्राप्त हो चुका था, उससे बदबू आ रही थी पर उनका ध्यान बदबू की तरफ नहीं था, उनका ध्यान था कि देखो उसके दांत कितने सुंदर हैं। ये तो उदाहरण मात्र है पर इसके कहने का आशय ये है कि अगर हम गुणों की तरफ दृष्टि देते हैं तो फिर अवगुण हमें दिखाई ही नहीं देते। और सम्यक दृष्टि की दृष्टि तो यही है कि वो गुणों की तरफ ध्यान देता है, अवगुणों को नहीं देखता है। अवगुण को देखने लगेंगे अपना मन काय को खराब करो, दूसरे की खराबी देख के हमें क्या समझ में नहीं आती, इतनी छोटी सी बात है। दूसरे की खराबी देख करके अपना मन क्यों खराब करती, अपने भाव क्यों बिगाड़ो। दूसरा जैसा है तो उसकी जिम्मेदारी हमारा क्या होती, हम तो उसके भीतर के गुणों को ही देखेंगे और उन्हीं से हमारा स्नेह होगा। इतना सा है जो रत्नत्रय या कि सच्चाई के रास्ते पर हैं, रत्नत्रय को धारण करने वाले हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी क्यों ना हो भैया, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति उसकी श्रद्धा होवे तो हमारा कर्तव्य है कि उसके बाह्य स्वरूप को देख करके हम घृणा ना करें। उसके अंतरंग में बैठे हुए जो श्रद्धान है सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति उससे हम स्नेह करें, उसके प्रति हम प्रीति भाव रखें। गुण प्रीतिर्मता, गुणों के प्रति जब हम प्रीति रखते हैं वही हमारी निर्विचिकित्सा कहलाती है। ऐसा ये निर्विचिकित्सा अंग है। और एक और अपन उसके बाद देख लें, अमूढ़ दृष्टि। स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता का पथे पति दुखा नाम का पथस्ते प्रसम्मति असंप्रक्ति रणकीर्ति अमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। अमूढ़ दृष्टि जो है वो किसके लिए कहना, का पथे पति दुखा नाम, जो कुमार्ग है अर्थात बेईमानी का रास्ता है। एक बात का पथ मतलब उन मार्ग जो सच्चा मार्ग नहीं है उस उन्मार्ग, और का पथस्ते भी, और जो उन्मार्ग पर चलने वाले जीव हैं उनके प्रति कैसा विचार रखें हम, उनके प्रति हमारा विचार असम्मति असंप्रति अनुकीर्ति। जो सच्चाई का रास्ता नहीं है और जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं, आज अगर देखा जावे तो सबसे ज्यादा यही चीज है कि जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा होगा
उसकी गुणों की प्रशंसा करने वाला एक आज कोई विरला मिलेगा, लेकिन जो बेईमानी पे चल रहा होगा उसके आगे पीछे 100 आदमी होंगे। हाँ ठीक ठीक कर रहे, तुम करते चले जाओ। ये विचित्रता है, लिखा हुआ है उसमें अपन क्या कहेंगे, लिखा हुआ है ग्रंथों में, लिखा हुआ है कि हाथी के ऊपर बंदर बैठा हुआ उछल कूद कर रहा है, हाथी शांत भाव से चला जाता है। इसका आशय क्या है स्वप्न का? तो कहते कि जो सच्चाई वाला होगा, सच्चे रास्ते पर चलता होगा, उसके सिर पर बोल वाला बेईमानी का रहेगा, बेईमान उसके लिए परेशान करेंगे और वो चुपचाप हाथी की भांति चुपचाप चला जाएगा और कुछ भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी में है। किससे कहें आज ईमानदार आदमी, किससे किसके सामने कहे कि भैया हम ठीक हैं, कौन सुनने वाला है उसकी। ऐसा ही जो है आज का समय, और हमें सम्यक दृष्टि के लिए क्या कहते कि जो जानते हो कि ये मार्ग सच्चा नहीं है, इस मार्ग पर चलने वाला सच्चा नहीं है, उसके प्रति असम्मति, मन से जरा भी उसका सम्मान नहीं करना, मन से नहीं करना, और असंप्रति शरीर से भी उसका सम्मान नहीं करना, और अनुकीर्ति और कभी वचन से भी उसके सम्मान के वचन नहीं बोलना। मन वचन काय से तीनों से जो है बुरे मार्ग का न मन में विचार करना कि ये अच्छा है, और न कभी वचन से कहना कि अच्छा है, न शरीर से उसकी प्रति अपनी कोई प्रशंसा करना, तीनों मन वचन काय से अगर हम उन मार्ग से बचते हैं और उन मार्गी से बचते हैं, तभी हमारी दृष्टि अमूर्त दृष्टि कहलाएगी, मूर्ता से रहित दृष्टि कहलाएगी। वैसे तो आज मेजॉरिटी का जमाना है, जिस तरफ ज्यादा लोग हैं उस तरफ सब शामिल हो जाते हैं, एक अकेला जो चल रहा है सच्चाई के रास्ते पर, उसका साथ देने वाले बहुत कम हैं। सुबेरे से संध्या तक आप उपास करो, और संध्या को थोड़ी आपको आकुलता बिकलता हो जाओ तो जाके बारे ज्यादा हैं कि जब होत नहीं है तो काय हूं करत, जाके वाले ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि देखो भैया सुबह से शाम तक आपने इतना पुरुषार्थ किया, बहुत अच्छा किया, बस थोड़ी और रह गई, अब जरा शांति रखो, कोई बात नहीं, धर्म ध्यान में मन लगाओ, निकल जाएगी। जैसा दिन निकल गया वैसे ही रात निकल जाएगी, तुम अपने व्रत में सफल हो जाओगे, हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता नहीं कर। लेकिन ऐसा कहने वाला नहीं है, उल्टा ये कहेगा कि काय को जब भूत नहीं है तो ये सब काय करत हो, माने जी नहीं करो, पाप करो हमारे संगे, हम भी करत हैं तुम भी करो, इसमें कोई को कोई दिक्कत नहीं है। सिनेमा जाने होए तो कोई मना नहीं करता, हमने कल ही कहा था टेलीविजन देखना हो तो कोई मना नहीं करता, और अपन तनक जाके मंदिर में बैठ जावे और फिर घरे पहुंचे काय मंदिर ही मंदिर दिखा थे वो यू तई सब कछु है तो उतई जाओ फिर मंदिर ही देखो। ऐसा है ये संसार, ऐसी अमूर्त दृष्टि हमारे पास कैसे आवे, ये मूर्ता से भरी दृष्टि है जो सच्चाई का रास्ता है। पोर को लड़का चलो जावे तो बहुत बुद्धिमानी को काम, और हमाओ केन लगे के महाराज के संगे जा रहे तो हरी का कर रहे तुम, ये ऐसे कौन करो जाते, कभी समझदारी है? ये तो हमारी दृष्टि है, देखो हमारी दृष्टि का फर्क। दूसरे का लड़का मुनि महाराज बन जावे तो बहुत सौभाग्य, उसको प्रशंसा कर भी दो, और अपनो बनन लगे तो कहने लगो अब भाई तुझे कैसे महाराज जी आ गए और जो कैसो रस्ता है। ये क्या है, ये क्या अमूर्त दृष्टि है? नहीं, ये अमूर्त दृष्टि नहीं है। सच्चाई के रास्ते के प्रति तो हमारा कम उत्साह है, बल्कि जो सच्चा मार्ग नहीं उसके प्रति हम ज्यादा उत्साहित हैं, यही हमारी दृष्टि का दोष है। सम्यक दृष्टि हमेशा सच्चाई के मार्ग के प्रति ही अपना उत्साह प्रकट करेगा, उसकी प्रशंसा मन से वचन से और शरीर से तीनों से करेगा, लेकिन जो बुराई का मार्ग है उसकी निंदा भी नहीं करेगा, तटस्थ रहेगा। माध्यस्थ भावम विपरीत व्यक्तौ, जो उन मार्ग पर चलते हैं जो कि सच्ची बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो कि अविनय हैं, अविनयेषु जो कि विनयवान नहीं है सच्चाई के प्रति, जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति विनयवान नहीं है, उनके प्रति क्या करना, तो कहते माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, ऐसी विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ रहना, ना उनकी निंदा करना ना उनकी प्रशंसा करना, यही अमूल दृष्टि है। आपको शायद कहानी सुनाई हो, महाराज जी ने भी सुनाई हो शायद, या कहीं और सुनी हो। अमूल दृष्टि कैसे हो जाती, जिसको अपन भेड़ चाल बोलते हैं वो अमूल दृष्टि, वो मूल दृष्टि है। 363 मत हैं दुनिया में, 363 मत हैं, और 363 में से कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका निर्णय कैसे करेंगे। तो कहते कि जो सच्चे देवगुरु शास्त्र हमने जो लक्षण बताया है उनके द्वारा बताया गया मार्ग ही सच्चा है, बाकी से हमें क्या लेना देना है, क्योंकि हमारी श्रद्धा तो उस पर है, बाकी की निंदा करने का भी भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एक गुरुजी पढ़ाते थे बच्चों को, तो पूछा एक दिन उनने कि अच्छा बच्चे ये बताओ, जैसे बच्चों को तो ऐसे पढ़ाना पड़ता है कि एक रोटी और एक रोटी बराबर कितनी, तो फौरन बता देते कि दो रोटी और एक पूछो तो बहुत देर हो सकती है, वो खाने पीने की चीजों से या इस तरह की चीजों से जोड़ देते, सुबृत्ति सिखा देते, या कि वो चलते थे एक खिसकाओ दो हो गए, अब दो खिसक गए, दो तीन गोटी खिसक गई, इस तरह से ऐसे सिखा रहे थे वो कि बताओ बच्चों 10 भेड़े एक जगह है, उसमें से एक निकल जावे तो बाकी कितनी बची। तो एक लड़के ने हाथ उठाया फौरन, कल हां बताओ, कल एक नहीं बची। अरे तुमने इतनी उत्साह से तो हाथ उठाओ, तुम्हें गणित भी नहीं बनता, सुनो फिर से सुनो, 10 भेड़े कहीं पर हैं, उसमें से एक भेड़ निकल जाए तो क्या बची। कहने गुरु जी हमसे पूछा तो अगर, तो हम तो रोज भेड़ों के बीच में रहते, हमसे पूछो अगर, गणित की आप जानो मगर भेड़ों की हम जानते, अगर एक निकल गई तो वे 10 ही निकल गई, एक होने बस, और आपकी गणित में भले 10 में से एक जावे तो 9 बचत होए, मगर आप भेड़ों की जहां तक पूछते तो उनकी तासीर हम जानते हैं। ये कह राती भेड़ चाल कि एक ने ऐसी कही तो उसके पीछे और सब हो गए, इतना विवेक नहीं रह जाता है कि सच्चाई क्या है। ये जो विवेकवान है, जो सम्यक दृष्टि है, वो विवेक रखता है कि क्या सच्चा है, उसके पीछे ही जाना, ऐसे नहीं कि जहां मेजॉरिटी है वहां चले गए और सच्चाई को हम भूल गए। तो भाई अपनी दृष्टि को पवित्र करने का ही हमें प्रयास करना चाहिए, और पवित्रता धीरे धीरे आती है। इन सारी चीजों को हमें समझ करके अपनी दृष्टि में निर्मलता ला करके और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, ऐसी भावना के साथ में। बोलिए आचार्य गुरुर्विद्या सागर मुनि। अब भगवान की स्तुति होगी। मिथ्याता में नाश देखो ज्ञान के प्रकाश, देखो आपा पर वास, देखो परमाणु शिव कानी है, समुद्र व्य जान देखो बंद विधवान, देखो तो पर पहचान, देखो परम प्रमाणी है, अनुभवताय देखो जीवों के जताय, देखो बहुना सताय, देखो मव्य और रानी है, जहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार, देखो सुखवेसार, देखो ये ही दिलवानी है।
बोलो दो। स्वासांग वाणी की।